نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير ولسرن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم آج ایک بار پھر سورۃ العصر کا سفر شروع کرنے لگے ہیں آج ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں گے اور حقیقت ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ کنویں کی طرح جتنا اس میں سے پانی آپ نکالتے جاتے ہیں تہوں میں سے اور میٹھا پانی نکلتا ہے اور بعض وقت انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ کیا یہ بات کبھی پہلے میں نے سمجھی تھی جو میں نے سنی تھی بالکل ایسا مجھے بھی آج پھر اسی پڑھانے کی تیاری کے دوران کئی دفعہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ واللہ ما لا ھذا کلام البشر کہ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اور جتنا آپ قرآن کے قریب جاتے ہیں جتنا آپ اس کو ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں اتنا آپ کو اس چیز کا یقین تیز سے تیز ہونے لگتا ہے تو بنیادی طور پہ آج ہم یہ جو سورت شروع کریں گے اس کو ہم تین دن میں پورا کریں گے اور قرآن پاک کی یہ سورت آپ میں سے میرے میں سے کسی کے لیے نئی تو نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ انداز بیان بدل دیتا ہے بات کو ورنہ کوئی چیز نئی نہیں جہاں میں تو اللہ کرے کہ ہم اس کو بالکل ویسی سمجھے جیسے اللہ کی مراد ہے ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے یا ہمیں ایسی باتوں کے بیچ میں پڑھ کر جس سے عمل سے زیادہ ہماری سوچ انٹلیکچوئل چیزوں پہ چلی جائے ہم لفظوں میں ہی ایسے کھو جائیں اور ہم اس کے اندر سے بحثوں میں اور مباحث میں فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا اور اس میں پھر آپ اپنے آپ کو کبھی کبھی بھلا دیتے ہیں ہم اس کا سفر کیسے کریں گے ہمیشہ کی طرح اور میں اس پہ اپنے آپ سے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتی کہ عمل کے لیے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری سورۃ العصر کو اگر آپ نے میں نے عمل کے لیے نہ پڑھا تو پھر ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کے باقی کسی حصے کے بارے میں کوئی بات کر سکیں تو انداز بالکل سمپل ہے ہم تین دن میں اس کو اس طرح سے سم اپ کریں گے کہ آج ہم اس سورت کا مقام اس سورت کی جگہ قرآن میں کیا ہے یہ کب کہاں ہوئی اور اس طرح چلتے جائیں گے جلدی کسی چیز کی نہیں لیکن انشاءاللہ جب یہ سفر پورا ہوگا تو چار نکاتی ایجنڈا یعنی فور ڈائمینشنل پوائنٹ آف ایکشن ہمارے سامنے ہوگا جس کو الایمان العمل الدعوی اور الصبر کہتے ہیں اور حقیقت یہ کہ یہ سورت اپنے اندر خزانوں کے خزانے رکھے ہوئے ہیں جتنوں نے بھی اس کو پڑھا اور پڑھایا جتنوں نے اس کی تفسیریں لکھیں اور اس کو آگے پیش کیا وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم حق تو اس کا ادا کر نہ سکے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اگر آپ اور میں لے لیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی تو ہم چند چیزیں اس میں ساتھ ہی ساتھ انفارمیشن والی بھی لیں گے اور بیچ میں عمل کے نقطے بھی ہوں گے کوئی بہت ٹیکنیکل طریقے سے میرا پڑھانے کا موڈ نہیں ہے اس دفعہ کہ 1 2 3 یہ ہے وہ ہے ایسا یعنی جو بات اس صورت کے ساتھ آپ کے میرے سامنے آتی جائے گی ہم اس کو اپنے عمل کے لیے لیتے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کریں گے کہ اے میرے مالک تو ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تو لکھیے چند باتیں سورۃ عصر کے بارے میں پہلی بات ہے کہ سورۃ العصر قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر کی سورت ہے ہم اس کو مصحف میں 102 سورتوں کے بعد پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ 114 ٹوٹل سورتیں ہیں بالکل آخر میں آئی ہے یہ جب مصحف میں اس کی ترتیب کو دیکھیں تو 103 نمبر کی سورت ہے مکی سورت ہے اور مکہ کے بھی ابتدائی دور کی سورت ہے اور اس سورت کا مضمون یعنی اس کا جب آپ ٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ اس کا انداز بھی مکی دور کے ابتدا کا ہے جب اسلام کی تعلیمات کو مختصر لیکن انتہائی دل نشین فکروں کی صورت میں بیان کیا جاتا تھا کہ سننے والے اگر ایک دفعہ سن لے تو بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتے یہ ایک ایسی خوبصورت صورت ہے کہ اس کا انداز سمجھ آ جائے صحیح उसके बाद फिर दिल नहीं करता कि आप इसको छोड़ें। और ये वो जुमले हैं जो एक दफा जुबान पे चढ़ जाएं तो जुबान दर जुबान आगे से आगे जाती जाती है। आप ये कह सकते हैं कि जामे और मुख्तसर कलाम है। और यहाँ ये बात भी जरूर आपको फायदा देगी कि कुरान पाक की तीन सूरतें तीन आयतों पे मुहित हैं, और उनमें सबसे पहले सूरत असर, फिर सूरत कौसर और फिर सूरतुल नसर है। और इन तीनों में से भी सूरतुल असर सबसे छोटी सूरत है। यानी गोया के आप और मैं ये कहने के लिए तैयार हैं कि सूरत नसर हकीकत में सूरत असर और सूरत कौसर सबसे छोटा मजमुआ है कुरान का। इसीलिए कुछ फुकहा का ये गुमान है कि नमाज में कम से कम तीन आयतें जरूर पढ़नी चाहिए, यानी एक छोटी सी सूरत के लिए। और आप कह सकते हैं कि मुकम्मल पैगाम है, सुनने वाला सुनकर भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकता। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के बकौल, अगर लोग इस सूरत को गौर व फिक्र से पढ़ें और समझें तो सिर्फ यही एक सूरत काफी है। ये सब बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको जहन में डाल रही हूँ कि आपको एहसास हो के कितना बड़ा खजाना आप लेने वाले हैं। यानी इस सूरत को अगर गौर व फिक्र या तदब्बर से लोग पढ़ना शुरू कर दें तो सिर्फ यही एक सूरत काफी है। और मैं दिल के दर्द के साथ कहूंगी कि मैंने कभी किसी को सूरतुल असर का वजीफा करते नहीं देखा, कभी इसको कोई 100 दफा पढ़ते नहीं देखा। इसके बरक्स लोग और बहुत सारी चीजों को देखते पढ़ते हैं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं देखते? शायद लोगों को अगर इसके मजामीन का यकीन हो जाता कि ये है क्या, तो फिर तो उनका हाल क्या होता जो दो सहाबा में से किसी एक के बारे में आता है कि जब वो मिलते थे तो वो उसमें से एक किस एक सूरत को पढ़ता, फिर दूसरा सुनता, फिर सलाम करके रुख्सत हो जाता। तो जब सहाबे कराम में से दो लोग इसको पढ़ते और मिलते और फिर उसके बाद वो दोबारा फिर सलाम करते, बीच में मैं कोट करूंगी पूरी रिवायत, लेकिन समझ लीजिए कि जब सहाबा इस तरह इस सूरत से प्यार करते थे तो हमने भी करना है। और जो शुरू क्या होती कि वलस्रिन इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम इंसान दर हकीकत बड़े हसारे में है। अव्वलीन सूरतों में से एक सूरत है, जामे तरीन सूरत है, और इंसान की निजात के रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाली सूरत है। आप ये कह सकते हैं कि पूरे कुरान के अंदर जो तालीमात हैं, कुरानी तालीमात, उनका खुलासा है। बास कहते हैं इसके 10, आप भी बाद में गिन लीजिए, बास कहते हैं इसके टोटल 14 लफ्ज हैं। अल्लाह अकबर, 68 हरूफ है इसमें। ज़ाहरी सादगी के पर्दों में इल्म और हिकमत के कई खजाने पोशीदा हैं। और आपका मेरा उर्दू जुबान से होना इस बात की खूबी बन गया कि इसका अंदाज इतना अवामी है कि उर्दू बोलने और पढ़ने और समझने वाले इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो अमूमन हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर गौर व फिक्र से काम लिया जाए तो अंदाजा होता है कि ये सूरत नूरुन अला नूर है। ज़ाहरी सादगी, आसानी, सलीस उर्दू है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। ये सूरत इस बात की दलील बन गई कि जिनको हिदायत के लिए कुरान पढ़ना है उनको सादी जुबान में पढ़ना पड़ेगा। जिनको कुरान से हिदायत लेनी है, अमल की बात लेनी है, उनको बड़ा आसान से लफ्जों में इसको पेश करना होगा। अगली बात नोट कीजिए सूरत के वर्च्यूज और इसकी खूबियों के बारे में, कि जो मुकाम सूरत अखलास का है, जिसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद कहते हैं, वो मुकाम है उस सूरत का अकीदे से मुतल्लिक। बड़ी अहम बात है, मुश्किल जुमला है। अकायद और ईमानियात, यानी अगर आप अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और अपने ईमान में इजाफे के लिए कुरान की एक सूरत को चूज करें तो सूरत अखलास है। वही मुकाम निजात और कामयाबी का अमली तरीका और उसकी मेथेडोलॉजी, यानी मेथेडोलॉजी टू बी सक्सेसफुल अचीवमेंट पाने के लिए वो इस सूरत को हासिल है। बहुत ही बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, हमीदुद्दीन फराही, वो कहते थे कि जवामियुल कलिम है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि कल्ला व दल्ला, लफ्ज थोड़े कलील पर दल्ला दलील वाले, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं। और इमाम शाफी का ये जुमला तो आप सुन ही चुके हैं कि लोग अगर तन्हा एक किसी सूरत पर गौर करें तो ये इनके लिए काफी हो जाता। और अगर आप इस सूरत को देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक वार्निंग के स्टाइल में اس کے خسارے سے متعارف کرایا اور پھر ساتھ ہی چار لفظوں میں پوری زندگی یعنی بیبی ہوڈ سے لے کر اولڈ ایج بڑھاپا اس عمر تک کے سارے سٹیپس بتا دیے. آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں قسم کھائی گئی, دوسری آیت میں کس چیز پہ قسم کھائی گئی وہ بتا دیا گیا, اور تیسری آیت میں استثنا ایگزیمپٹ کیا ہے, یعنی پہلی آیت میں قسم ہے, دوسری آیت میں وہ چیز ہے جس پر قسم کھائی گئی, اور تیسری آیت میں استثنا کہ چلو یہ تو ہے لیکن ایگزیمپٹڈ ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی اصل اور حقیقی کامیابی بیان کر دی, اعلیٰ درجے کی کامیابی کا یہاں ذکر نہیں. بڑی اہم بات ہے, آپ سب کو زبانی آتی ہے یہ صورت, میرا یقین ہے اس بات پہ. آپ دیکھیے کہ یہاں ادھر ایک بات جو شروع میں سمجھ لیجئے تاکہ آپ اس کو پھر انجوائے کر سکیں کہ صورت اثر میں ٹاپ موسٹ کامیابی کا ذکر نہیں ہے, اصل اور حقیقی کامیابی کا بیان ہے. چلیے مثال دے دیتی ہوں پھر آپ سمجھیں گے. بچہ پیپر لیتا ہے, ہم اپنے ہی وقت کی بات کرتے ہیں, 100 نمبر کا پیپر تھا جس میں سے پاس ہونے کی دا لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹ 33.3% تھا, ٹھیک ہے, اور ٹاپرز 80% 90% میں تھے. کلاس میں آنے والے اسٹوڈنٹس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ جو گھر سے یہ نیت کر کے آتا ہے پاس ہونا ہے, بس اس کی محنت, اس کا سارا کچھ, اس کا فوکس اسی سے متعلق ہوگا. ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے, میں نے فرسٹ آنا ہے. کیا دونوں کی ایفرٹس میں فرق ہوتا ہے, دونوں کے فوکس میں فرق ہوتا ہے؟ یہ صورت آپ کو ٹاپ کرنا نہیں سکھا رہی, اور یہ جب آپ کو بات سمجھ آئے گی نا تو آپ کے گوز بام ہوں گے. یہ صرف آپ کو پاس ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے. یعنی میں اس ساری بات کو اب خلاصے میں کرتی ہوں, اعلیٰ درجے کی کامیابی نہیں بلکہ خسر سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. منیمم کوالیفیکیشن کیا مطلوب ہے اللہ کو تم سے, تمہیں جہنم سے بچا کر جنت دینے کی, ٹو بی پاسڈ, یہ ہے ریکوائرمنٹ. یہاں گریڈرز نہیں ہیں, ٹاپرز نہیں ہیں. وہ اور اس آیت ہے, کسی کو یاد ہے تو بتا دے مجھے, سورۃ توبہ کی آیت ہے, چلے 100 نمبر آیت ہے, آیت ہی بتا دیں, مفہوم ہی بتا دیں. وہ کون ہے جن کو اللہ نے ٹاپر موسٹ میں سے کہا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ ہیں ٹاپرز, کہ کبھی مہاجر بن کے تم ٹاپ کرو گے انشاءاللہ, اور کبھی انصار بن کے تم ٹاپ کرو گے. اسی طرح سورت واقعہ, اولئک المقربون, اصحاب الیمین پاسر ونز ہیں, اور السابقون الاولون, السابقون السابقون یہ پوزیشن ہولڈرز ہیں. تو اب آئیے واپس ادھر, یہ سورت پوزیشن ہولڈرز کی بات نہیں کر رہی, اور آپ کو رونا آئے گا یہ سن کر کہ ہم میں سے بہت سارے تو صرف سورت اثر کے ترازو میں بھی نہیں تولے جا رہے ہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی یہ سورت کیا ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کتنا بڑا آئینہ ہے جس میں آپ کے چہرے کا ایک ایک پور دکھتا ہے, ایک ایک بال دکھتا ہے, ایک ایک داغ اور دھبا دکھتا ہے. اور اگر آپ قرآن پاک کی ترتیب پہ خوبصورتی کو دیکھیں نا, تو آپ دیکھیے کہ سورت زلزال, یہ بھی ایک الگ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, 99 نمبر کی سورت ہے زلزال. سو اذا زلزلت الارض زلزالہا, وہاں سے اگر آپ شروع کریں نا تو یہ 103 دیکھیں نا, تو یہ 5 نمبر کی سورت ہے. آپ ان مفسرین کے اوپر رحمت کی دعائیں کیجئے کہ جو محنتیں کر گئے. علماء کرام کہتے ہیں کہ سورت زلزال سے لے کر اب آگے, بالکل آپ دیکھیں نا 99 سے 114, 15 سورتیں رہ گئی نا, 16 رہ جائیں گی, چلے 99 کو بھی ملا لیں. وہ کہتے کہ ان سورتوں میں ایک ربط ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ سورت زلزال میں کیا آیا, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ٹھیک ہے, یرا لفظ کو دیکھیں, دکھانے کی بات تھی. تم میں سے جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دکھائی جائے گی. اب دکھایا جانا تو ایسے بھی ہے نا کہ جیسے آپ کو اسکرین دکھائی جا رہی ہے, دیکھ لیجئے, تو وہاں ہو سکتا ہے اسکرین پہ ہمیں ہماری نمازیں دکھائی جا رہی ہوں گی, ہمیں وہاں ہمارا اخلاص دکھایا جا رہا ہوگا. دیٹس اٹ, بس دیکھنے کی بات تھی, اس سے زیادہ نہیں تھا. تھوڑا سا اور آگے آ جائیے, سورت عادیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, آپ میرے ہاتھوں کو دیکھیے, وَحُصِّلَ, حاصل کیا جائے گا, مَا فِي الصُّدُورِ, جو تمہارے سینوں میں ہے. اس میں بھی کچھ نکل رہا ہے نا, وہاں کیا تھا, دکھایا جا رہا ہے, یہاں کیا کیا جا رہا ہے, حاصل کیا جا رہا ہے, ٹیک آؤٹ کہہ لے یا شو کیا جا رہا ہے. آگے چلے سورہ قاریہ میں کیا آتا ہے, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. उधर नामे आमाल के देखने और दिखाने की बात हो रही थी. और चले जाइए थोड़ा आगे तो सूरत तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर में लतरवुन्नल जहीम, वहाँ जहन्नुम के भी देखने की बातें थी. यानी उन चार सूरतों में देखने या दिखाने या हासिल करने की बात है. मुझे ऐसे लग रहा है कि सबके पेपर कलेक्ट कर लिए हैं. 3 घंटे का पेपर हो रहा है इस वक्त. एग्जामिनर को भी इजाजत नहीं है कि वो स्टूडेंट से पेपर छीन ले. और स्टूडेंट के पास पूरी चॉइस मौजूद है कि वो लिखे, लिखे हुए को मिटा दे, सफ़ा फाड़ दे, दोबारा लिख ले, उसमें ऐड ऑन कर दे, उसके अंदर स्टिकी नोट्स लगा दे. लेकिन जब एक दफ़ा पेपर पूरा हो गया तो वलस्रिन्नल इंसान लफी खुसर, इस सूरत असर में अब हतमी अंदाज है. आप कह सकते हैं कि दुनिया की हकीकत को कुरान के लेंस के नीचे रखा जा रहा है. और मुफस्सरीन कहते हैं कि पूरा कुरान कहीं से भी आप पढ़ें, एंड पे वो सूरत असर पे आ जाता है. ये इंडेक्स है और पूरा कुरान उसकी डिटेल्स है. किसी किताब का इंडेक्स पढ़ लें तो काफ़ी हद तक पता चल जाता है ना, इसमें ये है. और अगर आप कह दें कि अगर पूरा कुरान एक दरख्त है तो सूरत असर वो बीज है जिससे वो दरख्त फूटता है और वो आगे जाता है, तो वापस आ जाते हैं कि इसमें खुसर से, नुकसान से बचने की दावत दी गई है. ये नहीं कहा गया कि तुम बस फर्स्ट हो जाओगे, यानी ये तो करना पड़ेगा. फिर आप देखेंगे कि कलाम में ताकीद है, एम्फेसाइज है. अल्लाह सुब्हान तआला पुट टू मच एम्फेसाइज ऑन दिस. आप सब देखें, वल असर, वाओ से अंदाज है, कसम. फिर इन्ना, हरफ ताकीद है. फिर इंसान लफ्ज से पहले अल इंसान, इन नल इंसान, इंसान का लफ्ज देखिए. फिर फी से पहले लफी, और खुसर के नीचे खुसरें, दो जेरें. यानी इसमें आपको 5 ताकीदें दिखाई जा रही हैं. गोया कि आप ये कह सकते हैं कि इस सूरत में अल्लाह ने हमारी जुबान में समझने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि ख्वाब गफलत से बाहर आओ, तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपनी जिंदगी को जाया किधर कर रहे हो. फिर एक और बात लिखे, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं सिर्फ आपको पहले वो ऐसे जैसे नेविगेट कर रही हूँ ताकि आपका पॉइंटर तो फिट हो कि हम पढ़ने क्या लगे हैं. इस सूरत की आखिरी आयत जो तीसरी है, उसमें हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे. अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र. ये जो 4 थिंग्स है ना, ये कंपल्सरी हैं, पिक एंड चूज नहीं है. इम्तिहान में 8 सवालों में से 5 करने होते हैं और पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता था, वो करें, बाकियों में से 4 कर लें. इस सूरत में कोई एक चीज ऐसी नहीं है, यू कैन टेक दिस और लीव इट. अच्छा, जैसे वो आप मैकडोनल्ड की किसी शॉप पे खड़े होके ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको अपनी डिफरेंट डील्स दिखाते हैं और वो उस डील में क्या लिखा होता है. अच्छा, इसमें आपके 2 बर्गर आएंगे, इसमें पिज्जा आएगा, इसमें चिप्स है, ये मील है, एड ऑन्स है, इसमें आप कोल्सला डाल लें, करते हैं ना. फिर जो कस्टमर खड़ा होता है ना, वो अपनी पसंद का पैकेज बनवा लेता है. वो कहता है ओके आई विल पिक 1 मील, बट आई डोंट वॉन्ट पेप्सी, कैन आई एड मिल्कशेक. वो कहता है यस. वो पेप्सी निकाल कर कुछ और पैसे डालकर आपसे ले लेगा, एड ऑन्स चलते हैं. यही चीज आप जिंदगी की हर फील्ड में देखते हैं. कपड़े लेने गए, देने गए, दर्जी है, कोई भी बंदा आप कहते हैं ये बनाना है पर मुझे ये फूल नहीं पसंद, मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे, वो कहते हैं जो कहेंगे टेलर मेड. आप घर बनवाने जाते हैं, वो आपको नक्शा दिखाते हैं, वो कहते हैं ये बिल्डिंग है, इसमें हम ये करेंगे, आप कहते हैं ये ठीक है लेकिन मुझे इस रंग की टाइलें नहीं लगवानी. इस दुनिया में हम बहुत जगह पे पिक एंड चूज करते हैं. इस सूरत की सबसे अहम, मेरी नजर में आप इसमें से कोई चीज छोड़ नहीं सकते. यू कैन पिक आमनू और लीव अमिलुस्सालिहात, और यू कैन चूज ओनली आमनू और अमिलुस्सालिहात के बाद तीनों ही छोड़े बैठे हैं. आज मुसलमान मौजूद हैं, रस्मी मुसलमान, किताबी मुसलमान, जिनके मजहब के खाने में लफ्ज रिलीजन है, जिनके पासपोर्ट पे इस्लाम है. लेकिन आमनू के बाद अगली सीढ़ी पे तो चढ़े नहीं, तीसरी चौथी तो उनके लिए नामुमकिन है. तो इसमें 4 स्टेप्स हैं. आमनू, पहले आपका अपना दिल अल्लाह को पहचानता है. जब आपके दिल में अल्लाह की मार्फत आ जाती है, आप अल्लाह को बड़ा समझते हैं, तो अमिलुस्सालिहात, अच्छे बंदे के पास बैठ के अच्छे काम करने को दिल चाहता है. अच्छी कंपनी में बैठकर इंसान और भी अच्छे काम करता है. कहाँ, जिस बंदे की मुलाकात रब से हो जाए. आमनू क्या है? आई बिलीव देर इज नो गॉड बट अल्लाह. अल्लाह से बात है, अल्लाह से चीत है, अल्लाह से मोहब्बत है. आप जब जू ही अल्लाह को पहचानते हैं तो अमिलुस्सालिहात आ जाते हैं, वो आपके पर्सनल नीड्स हैं. ये तो हमारा हाल है ना कि ईमान तो है लेकिन अमल सवाले कोई नहीं, यानी बल्ब लगा तो है लेकिन फ्यूज है। आप देखिए अक्सर लोगों के घरों में 10 बल्ब भी लगे हैं ना तो 2-4 जल रहे होते हैं, बाकी नहीं, केयर ही नहीं हम करते। बहुत सारे लोगों का आज हाल क्या है, ईमान का दावा है लेकिन अमल के बल्ब फ्यूज हैं। एक बल्ब उन्होंने लगाया हुआ 100 वॉट का, मसलन नमाज, तहज्जुद, वजीफा, लंबी लंबी नमाजें, बड़ी बड़ी बातें, और उसी को बड़ा करते जाते हैं। और जब नेक होते हैं ना तो वो 60 वॉट की जगह फिर वो 80 वॉट का बल्ब लग जाता है, फिर जरा और थोड़े से नेक होते हैं ना तो 80 की जगह 100 वॉट का बल्ब होगा। सवाल ये है कि आउट ऑफ 100 नंबर तो आपको 100 ही मिलने हैं ना, कोई दुनिया का ऐसा उस्ताद या एग्जामिनर या पेपर चेकर आपने नहीं देखा होगा कि किसी को 100 में से 110 नंबर दे दे। तो वो लोग जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और अपने ही अकाउंट में पैसे जमा करा रहे हैं नेकियों के, और ही नेक हो रहे हैं और ही नेक हो रहे हैं, और वो इतने नेक हो जाते हैं कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले खुद ब खुद ही खुद को गुनाहगार समझने लगते हैं, क्योंकि वो फराइज के साथ सुन्नतों का भी इहतमाम करते हैं, नवाफिल का भी करते हैं। उनके पास 5 नहीं 7 नमाजें होती हैं, वो सिर्फ फर्ज रोजे 30 या 29 नहीं रखते, वो फिर उसके अंदर दूसरे भी रखते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर तीसरी सीढ़ी पे वो नहीं चले, वतवासो बिल हक, नहीं, हम क्यों बुरे बने, मैं क्यों कहूँ बच्चों में, मैं क्यों बुरा बनूँ, मैं अपनी बहुओं को क्यों रोकूँ, मैं क्यों टोकूँ, ये ना करूँ वो ना करूँ, तो याद रखिए 100 में से 100 तो ले लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन 100 में से 100 लेकर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट आना और बात है, और टोटल मार्क्स में से आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को पास करना, ये बिल्कुल फर्क बात है। क़यामत के दिन आमनू फर्स्ट क्वेश्चन, ये कंपल्सरी है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंपल्सरी, यू कैंट लीव इट। सेकेंड वामिलो सालेहात, ये आसान सवाल है, हर पेपर में मुख्तलिफ सवाल होते हैं ना, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आपकी अपनी मर्जी है, आप थोड़ा सा आदत डाल लें तो नमाज के बगैर चैन ही नहीं आएगा आपको, आप अपना जरा सोना जागना ठीक कर लें, एन तहज्जुद के वक्त आपकी आंख खुलेगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट द मुश्किल, द टॉप हार्ड क्वेश्चन ऑफ अल्लाह सुबहान तआला के इस दिए हुए पैकेज में क्या है, वतवासो बिल हक, ये तो कल बातें करेंगे और परसों करेंगे, हम पसीने आ जाते हैं, अपनों में बेगाने हो जाते हैं, यू बिकम क्रेजी, इट्स टू मच। इसी हॉल में मैंने आपको उधर कुर्सी रखते थे, हम तो दाइये दीन कोर्स करवाया था, शायद 3 से 4 साल पहले किया होगा, वो बात याद आ गई है, 10 दिन का वो कोर्स था हमारा, सबसे मुश्किल पेपर ये है। लेकिन जब बंदा कुछ अरसा तक आमनू के बाद आमिलो सालेहात और खास तौर पर इल्म की दुनिया में कदम रख लेता है तो बड़ा मजा आने लगता है, अब मैं पढ़ाऊंगी, अब मैं भी उस्ताद बनूंगी, अब मैं भी तबलीग करूंगी, तो वह तवासो बिल हक आने लगता है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि इससे जो अगली इसके ऊपर बाढ़ है ना, वह तवासो बिस सब्र, ये बड़ी हार्ड है, इस्तकामत नहीं रहती। दूर से लोग देखते हैं कि लोग उस्तादों को फूलों के गुलदस्ते देते हैं, उनके बैग पकड़ते हैं, उनके आगे जूतियां रखते हैं, कहते हैं बस ये तो करना, और इंसान मोटिवेट भी होता है और होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, जैसे बच्चे माँ बाप को देख रहे होते हैं और तस्वुर में खुद को वहां देख रहे होते हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स उस्तादों को देख रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, वो कहते हैं ना कि हर फूल की किस्मत में कहाँ, किसी दुल्हन के बालों में लगना, कुछ फूल खिलते हैं कब्रों पे लगने के लिए, ये अलग पता जाता है जब तवासी बिल हक के बाद आजमाइशें, परेशानियां, बातें, चीतें के फिर वह तवासो बिसब्र, ये आखिरी सीढ़ी है, ये हैं वो जिनको कुरान कहता है उलुल अज़्म, वमा युलक्काह इल्ला ज़ू, सूरत हामिम सजदा, ये अमेरिका में कराया था अभी, ये सीरीज ट्रिप में लेक्चर था इस पे पूरा, बड़े नसीबे वाले है यूट्यूब पे, बड़े खुश नसीब लोग के नाम पे, ज़ू हज़्ज़े नज़ीम, खुसरान से बचने का, खसारों से बचने का, बैंक करप्सी से बचने का नुस्खा है सूरत में। कल वहां जाकर अगर अपनी वाकई पर्सनल ग्रूमिंग वाली नेकियां, अपनी इबादात वाली नेकियां, अपनी बाकी चीजों को देखना चाहते हो, तुम कोई नागवार मंजर नहीं देखना चाह रहे, बैंक्रप्सी क्या होती है, सब था चला गया। अब इंशाल्लाह जब आपको इसके वो खुसरान के मुतरादिफ दिखाऊंगी तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ने यहां लफी खुसर क्यों कहा, लफी नुकसान क्यों नहीं कहा, लफ्ज नुकसान भी अरबी का, और भी लफ्ज है, अभी मैं उलझाना नहीं चाहती आपको, सारे कुरान में भी है, यहां खसारे का लफ्ज बोल के अल्लाह ताला ने बता दिया है कि फेल होने से बचना चाहते हो ये काम करने पड़ेंगे। माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, देखो फेल हो गए ना, इस जमात में दोबारा तुम्हें बिठाया जाएगा, और अगर हाई लेवल का कोई स्कूल हो कॉलेज हो तो माँ बाप कहते हैं पहले तुम्हारी फीसें भरी, तुम पास नहीं हुए, अब एक और साल हम तुम्हारी फीसें भरें। यहाँ बिल्कुल यही बात है कि ये चार काम नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे और आगे नहीं आओगे। आप इसको बिल्कुल ऐसे सोचिए कि एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है मरीज के लिए, उसमें चार किस्म की गोलियां होती हैं और साथ लिखा होता है चारों ही खानी है, बल्कि अगर इसमें से एक नहीं खाओगे तो दूसरी का भी असर नहीं होगा। ये उसके साथ मिलके काम करती है, ये उसके साथ मिलके करती है ये। अब कोई मरीज वो चारों में से एक छोड़ दे या दो छोड़ दे या बदल ही दे, नहीं नहीं मुझे ये अच्छी नहीं लगी, मुझे इसका रंग अच्छा नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, तो वो उससे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नुकसान क्या होगा हम सब जानते हैं। तो इस चीज़ को आपको मुझे थोड़ा सा समझने के बाद अब इस बात का तो यकीन आ चुका है कि एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ हम पलटने वाले हैं। ये सूरत आपको दिखाती है कि कैसे दुनिया में आने के बाद एक इंसान शुतर बेमुहार नहीं छोड़ा गया। अल्लाह सुबहाना ताला ने कामयाब जिंदगी गुजारने के लीस्ट मिनिमम स्टेप्स आपको मुझे इसमें बता दिए। ये जो हम पढ़ते हैं ना इहदिन सिरात अल-मुस्तकीम और सवाल सबील, वो सब इसी एक लफ्ज के अंदर आ जाता है, जिसको अगर आप देखें कि ये क्या चीज है, और आप देखेंगे कि दीन के तकाजों का एक कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्बिनेशन इस आयत में। फिर अगली बात नोट कीजिए, पॉइंट्स में 1, 2, 3 लिखेंगे ना तो कोई चीज छुटेगी नहीं। अगली बात लिखे कि सूरत में ओवरऑल इंजार का रंग गालिब है। कुरान का अंदाज या इंजार है या तबशीर है। नबी सल्लम का नाम बशीरम व नजीरा किस सूरत में? सूरत अलहज़ाब, मुबशिरम व नजीरा, ठीक है। इस सूरत में ओवरऑल डोमिनेंसी ऑफ द स्टाइल इज इंजार, वार्निंग। तबशीर है लेकिन छुपी हुई, खफी, यानी जैसे माँ बच्चे को डांट रही होती है ना, तो साथ थोड़ी सी उसकी तारीफ भी कर रही होती है, लेकिन कभी तो खुल के बड़ी करती, मेरा बेटा माशाल्लाह, मेरा बेटा शेर है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, लेकिन कभी वो देख रही होती है कि इसकी तारीफ कर दी तो ये और ही सर पे चढ़ जाएगा, तो फिर डांट होती है, लेकिन एंड पे कहती है वैसे मेरा बच्चा अच्छा है, कोई बात नहीं। तो तबशीर है मगर खफी, यानी आप लिख सकते हैं इस सूरत में इंजारे जली, मुश्किल लफ्ज मैं बोल रही हूँ, जो कोई लिखना चाहे लिख ले, नहीं लिखते तो आसान मैंने बोल दिया पहले, इंजारे जली, जीम लाम या जली, जलवा जला, अभी चंद दिन पहले कहीं पढ़ाया मैंने जला के लफ्ज में, और तबशीरे खफी है। अच्छा, इसमें तरबियत का एक बड़ा खूबसूरत नुकता है, माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, और उस्तादों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा अमल है, अपने शागिर्दों और जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनका अपनी टीम्स के साथ कभी ये अंदाज होना चाहिए और कभी दूसरा होना चाहिए। हर वक्त की डांट भी अच्छी नहीं होती और हर वक्त का लाड भी अच्छा नहीं होता। फिर अगली बात नोट कीजिए कि सूरतें तो और भी हैं कुरान में, लेकिन इस सूरत का जो स्टार्ट है, एक तो कसम से है ना, वल असर, लेकिन चुका देने वाला, जैसे ना एस्ट्रोनिस्ट ख्वाबे गफलत से बेदार करने वाला अंदाज है, जिस तरह आप कहते हैं ना एक बच्चा सो रहा है तो माँ कहती उठ जाओ बेटा, उठे उठो, बीवी को शौहर कहता है उठो नमाज पढ़ो, ये भी एक अंदाज होता है, और एक कहता है उठिए जल्दी उठो, यानी एक ख्वाबे गफलत से बेदार करने वाला ऐसा खूबसूरत जिसमें झुंझोड़ना और चुकाना ये भी आ जाता है, और आप कह सकते हैं कि खुसराने मुबीन आलमगीर, यानी इंटरनेशनल लॉस का इसमें अल्लाह ताला ने इशारा दिया। देखिए आप समझिए कि कोरोना में इंटरनेशनली दुनिया मुतासिर हुई, इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, डॉलर का रेट ऊपर नीचे गया, महंगाई हुई, यहाँ वन ऑन वन जैसे आप और मैं, फिर उससे जरा सा आगे चलिए तो हमारी फैमिलियां, उससे एक और कोर, आप दायरे लगा लीजिए, फर्स्ट मेरा नुकसान है, एक गोल दायरा आपने लगाइए, क्योंकि लफ्ज जहां आता है ना लफी खुसरिन है, नकिरा में आया है, ये जब लफ्जों पे आते हैं तो हम बात करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन एक होता है इंसान का पर्सनल नुकसान, घर में 6 लोग हैं लेकिन एक बच्चे का फोन गुम गया, एक मर्द की जेब कट गई, उसका अपना नुकसान है। एक सेकंड कोर होता है, मिसाल है कि बल्ब टूट गया, तो अब उस कमरे में 6-7 लोग जो बैठते थे सबका नुकसान हुआ, ऐसे ही है ना, ये उस घर वालों का हो गया। एक थर्ड कोर लगाइए, उस रोड का ट्रांसफार्मर जल गया तो क्या हुआ, 6-7 घरों की बिजली चली गई जो उस ट्रांसफार्मर की जद में, ये थर्ड कोर था। नेक्स्ट कोर पे चलिए, पूरे मुल्क में ही कोई ब्रेकआउट हो गया, कोई जलजला आ गया, तूफान आ गया, जैसे यहां भी आप सुनते हैं हवाएं चली तो दरख्त इधर उधर गिरे, पूरे शहर की बिजली चली गई, है ना। अब आप जरा इमेजिन कीजिए वो कितनी बड़ी क्लेमिटी होगी, वो कितना बड़ा नुकसान होगा जिसमें पूरी दुनिया की बिजली चली जाए। यहां उसका जिक्र है, दैट इज द पॉइंट। एक बंदे का नुकसान हो दूसरा उसका पूरा कर देगा, दो का हो गया, एक घर वालों का, वो हमसाए उसको बिजली की तार दे देंगे, भाई आपके घर का स्विच खराब हो गया, ये ले तार हमसे ले लें। तो अगर पूरी गली की बिजली चली गई, हो सकता है किसी और मोहल्ले वालों से गवर्नमेंट की तरफ से कोई तार शार प्रोवाइड कर दिए जाएं, यहाँ आलमगीर नुकसान है। अल इंसान है, इसम जिन्स होता है ये, अल्लाह ताला ने यहाँ एक ऐसी बात कर दी है, बिल्कुल वही अंदाज़ है जो सूरत 3 में भी आता है कि सुम्मा रददनाहु अस्फलस साफिलीन, वहां असफल साफिलीन की कैफियत जो थी ना, यहां उसी के इक्विवेलेंट, ये पॉइंट अलग से लिख लीजिए कि जो बात सूरत 3 में सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन कहकर बयान की गई थी, आम इंसानों की अमूमी हालत, वहां भी इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालेहात की बात थी, यहां अल्लाह ताला ने बात करके इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालेहाती वतवासो बिल हक्की वतवासो बिस सब्र की बात की। अगर आपको सूरत याद है तो उसमें आप देखिए क्या आता है, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालेहाती फलहुम अजरुन गैरु ममनून, वहां फलहुम अजरुन गैरु ममनून है, वहां अल्लाह ताला ने अनलिमिटेड एंडलेस सप्लाई की बात कर दी कि कामयाब जो होंगे फिर वो थोड़े नहीं कामयाब होंगे। यानी फील कीजिए कि जब खुसरान बैंकरप्सी है तो उसका ऑपोजिट आपको उधर मिलता है फलहुम अजरुन गैरु ममनून में। सूरत असर में ना सिर्फ ये कि लकद खलक नल इंसान फी अक्सनी तकवीम जैसी कोई बात नहीं, बल्कि वहां अजरुन गैरु ममनून था ना, तो यहां सिर्फ खुसरान के बाद बात खत्म कर दी। कुरान का अंदाज क्या है कि जहां जहन्नुम की बात है ना वहां जन्नत की बात आती है, पहले अगर डरावा होता है तो फिर होता है, इस सूरत में नहीं है। देख लीजिए बलस इन अल इंसान लफी खुसर, ये नहीं कह दिया कि हाँ इंसान खुसर में है लेकिन कुछ लोग फिर भी बेनिफिट में ही होंगे, प्रॉफिट में तो होंगे। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बड़ी बात कह दी। ये जिंदगी ऐसी खूबसूरत हो जाती है जब आपको मुझे ये बात समझ आ जाती है। तो अगर आप और मैं हकीकत में सिर्फ इस एक सूरत को समझ जाएंगे ना, तो फिर बतन और फर्ज के तकाजे नहीं, यानी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, फिर जिबिली ख्वाहिशात, खाना पीना पहनना ओढ़ना, फिर फरसूदा बातें, भेड़ चाल, लोग जो कर रहे हैं तुम भी करो, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, ऐसा करने वाले लोग नहीं रहते। तंग रास्ता है, चलना इसी पे, मुश्किल रास्ता है, जाना तो है, मुश्किलात हैं, करनी तो हैं। और आप देखेंगे कि जो बंदा हसास होता है ना, सेंसिटिव पर्सन, जिसके अंदर एक शऊर है, जिसके अंदर एक नूर आ चुका होता है, जब वो सूरत असर को समझ के पढ़ता है तो उसको कम अज कम ये यकीन आ जाता है कि इंसानों में से अक्सर को अपना फायदा भी नहीं पता। देखिए आप कोड़े खा रहे हैं घी में डूबे हुए, पानी पी रहे हैं जिसमें कई किस्म के जरासीम है, कोई डॉक्टर और बड़ा हेल्थ कॉन्शियस पर्सन या कोई न्यूट्रिशन आपको ये करता देकर आवाजार हो जाएगा, हाय ये चौपड़ के घी खा रहे हैं, हाय ये चीनी के चार चार चमचे डाल के चाय पी रहे हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। दूसरे जो खाओ कहते खा लो जी, जब मरना ही है तो खा के मरो, शुगर तो हो ही गई है। इस सूरत को पढ़ के आप अगर वाकई एक सेंसिटिव पर्सन है ना, तो वो जैसे कहते हैं ना कि तबीयत पे बोझ आता है कि लोगों को ये बात क्यों समझ नहीं आती। जैसे अल्लाह के नबी फरमाया करते थे ना कि लोगों जो मुझे पता है अगर तुम्हें पता होता, और जो मैं देखता हूँ कि मुर्दों के साथ क्या किया जाता है, अगर तुम्हें पता चलता तो तुम कभी भी अपने मुर्दों को दफन ना करते। सूरत को पढ़कर ऐसे ही लगता है, कहीं जलजला आ गया है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई जहाज गिर गया, ये खबरें भी कभी सुनी होंगी, इन अल इंसान लफी खुसर इससे भी बड़ी खबर है। लेकिन हम आसान समझकर हर नमाज में पढ़ते होंगे, छोटी समझकर आदतन करने कराने वाले पढ़ते होंगे, लेकिन असल में नहीं पढ़ते। ऐसे लगता है किसी का कुछ खो गया, लेकिन अल्लाह ना करे आपको एकदम आवाज आए और कोई कहे मामा नेबर्स में चोरी हो गई, वहां डाकू आ गए, वहां चोर आ गए, फलां नेबर में आग लग गई, क्या आप बड़े ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे? कभी भी नहीं बैठेंगे। हमसाए में आग लगी होगी तो आप मुतमईन होंगे, हमसाया बीमार है, उधर कोई मौत हो गई, आप आराम से बैठेंगे। बिल्कुल इसी तरह वलसरिन नल इंसान नलफी खुसर की चुका देने वाली आवाज एक हसास और बाशौर इंसान के दिमाग पर बोझ डालती है, फिक्र लग जाती है, और उसके बाद फिर वो कोशिशें ज्यादा करता है तो किसकी, वतवासु बिलहक्की वतवासु बिसबर। वो कहते हैं ना कि वक्त फुर्सत कहाँ काम अभी बाकी है, दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। जितना इंसान अपनी अंदर की आंख खोल कर इस कुरान को पढ़ता है ना, और खास तौर पे सूरत को पढ़ता है, उसको उतनी ज्यादा इस दुनिया की हकीकत समझ आती है।